24/7 इंडिया नामक न्यूज़ चैनल की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। पार्टी में मुंबई के युवा नेता यशवर्धन सिंह भी आए हुए थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब डिनर करने के लिए जा रहे थे। जब से वैदेही को यशवर्धन सिंह के हाथ से अवार्ड मिला था, नरगिस उसे घूर के देखे जा रही थी। तुम्हें क्या हो गया? तुमने ये सड़ी ही शक्ल क्यों बना रखी है? उसका बना हुआ मुंह देखकर वैदेही ने पूछा। कल तो बड़ा बोल रही थी कि उसको आने का टाइम नहीं है, और आज ये सब? जब से तुझे उसके हाथ से अवार्ड मिला है, उसके बाद से तो मुझसे बात तक नहीं कर रही, नरगिस ने रूखे अंदाज में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना, मैं उससे तो आज पहली बार मिली हूँ, और हम दोनों की दोस्ती तो पूरे 2 महीने 25 दिन पुरानी। वैदेही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले नरगिस ने उसकी बात काटकर कहा। जी नहीं, 2 महीने 25 दिन 8 घंटे और 15 मिनट। ऐसे क्या तुम पल पल का हिसाब रखती हो? वैदेही ने आंखें तरेर कर कहा। मैं भी रखती हूँ और तुम्हें भी याद रखना होगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है वैदेही, और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब हम पहली बार मिले थे। तुम नहीं होती तो आज, नरगिस भावुक होकर बता रही थी कि वैदेही ने उसे चुप कराते हुए कहा। अरे बस भी करो, तुम्हारा ये किस्सा मैं ऑलरेडी 20 बार सुन चुकी हूँ। तुम्हारा बस चले तो इस पर भी एक अलग से हेडलाइन बनवाकर लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ चलवा दो। हाँ हाँ ठीक है, नरगिस ने बात को बदलने के लिए यशवर्धन सिंह की तरफ देखकर कहा। वैसे रियल में ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। हाँ कहो तो रिश्ता लेकर जाऊँ तुम्हारी तरफ से? क्या सच में? नरगिस ने शर्माते हुए कहा। क्यों नहीं, वैदेही ने शरारती अंदाज में कहा। वो दोनों आपस में बातें कर रही थीं तो वहीं यशवर्धन सिंह की निगाहें वैदेही पर टिकी हुई थीं। उसे हंसता देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वो कई लोगों से घिरा हुआ था जो कि उसकी तरह राजनीति से संबंधित थे। अच्छा अब उसे छोड़, मैं हमारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती हूँ, कहकर नरगिस वहां से चली गई। वैदेही को अकेली देखकर यशवर्धन ने अपने पास खड़े आदमियों से कहा, एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। यशवर्धन उनसे अलग हुआ और वैदेही की तरफ जाने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर वैदेही ने अपने व्यवहार को संयमित किया। यशवर्धन सिंह उनके पास आया और कहा, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस वैदेही जी। वैदेही ने नकली मुस्कुराहट के साथ उसे थैंक यू बोला। बातचीत को शुरू करने के लिए यशवर्धन सिंह ने फॉर्मल तरीके से बात करना शुरू किया। हमने आपके सारे कवरेज देखे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं आप। क्या आपके पास इतना टाइम है? वैदेही ने हैरानी से पूछा। उसकी बात सुनकर यशवर्धन हल्का सा हंसा और कहा, जी बिल्कुल, एक जिम्मेदार नेता होने के नाते हमारी नज़र चारों तरफ रहती है, खासकर इस तरफ कि हमारे शहर में कौन से क्राइम हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप अपने शहर की खबर रखते हैं। वैसे सुना है कि आप इस बार सीएम की पोजीशन आपकी है, वैदेही ने नरगिस की बताई न्यूज़ को कन्फर्म करने के लिए पूछा। उसका पता तो विधानसभा के चुनावों का नतीजा आने के बाद ही चलेगा। वैसे आप चाहें हमारी पार्टी मीटिंग को अटेंड कर सकती हैं। आपको पता होगा कि मैं क्राइम डिपार्टमेंट से हूँ, तो उसी से जुड़ी न्यूज़ कवरेज करती हूँ, और वैसे भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी रिपोर्टर्स होंगे ही। वैदेही के मुंह से ना सुनकर यशवर्धन सिंह को अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं पिछले काफ़ी समय से आपसे मिलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इलेक्शंस के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। उसकी बात सुनकर वैदेही ने हैरानी से पूछा, और मुझसे मिलने की वजह? ये तो आपको मीटिंग में आकर ही पता चल सकता है। आपका इंतजार रहेगा मिस रघुवंशी। क्या वहाँ और भी रिपोर्टर्स को बुलाया जा रहा है? ये मीटिंग पूरी तरह प्राइवेट होगी। कल तक आपको मीटिंग की जगह और टाइमिंग के बारे में बता दिया जाएगा, यशवर्धन सिंह ने कहा और वहाँ से पार्टी से निकल गया। उसके जाने के बाद भी वैदेही उसके बारे में सोच रही थी। जब पार्टी मीटिंग प्राइवेट होने वाली है तो इसने मुझे क्यों इनवाइट किया? एक तरफ तो कहता है कि मैंने आपकी सारी कवरेज देखी है, और दूसरी तरफ मुझे इस तरह की मीटिंग में इनवाइट करके गया है। इसे पता नहीं क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में क्राइम न्यूज़ कवरेज करने वाले रिपोर्टर नहीं जाते? वैदेही उसके ख्यालों में गुम थे कि तभी नरगिस उसके पास आई। वो उन दोनों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ गई थी। वैदेही को शांत देखकर उसने पूछा, तुम फिर से कहीं खो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने नरगिस के हाथ से एक ग्लास लिया और उसे एक बार में ही खत्म कर दिया। उसे पीने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर आ चुकी थी, लेकिन वैदेही के मन में यशवर्धन की ही बातें चल रही थी। वैदेही सुबह उठी तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। वैदेही ने उसे खोलकर देखा तो उसमें यशवर्धन सिंह ने मीटिंग का एड्रेस और टाइम भेजा था। इसे मेरे प्राइवेट नंबर कहाँ से मिले? वैदेही उसका मैसेज देखकर हैरान हो गई। फिर उसने खुद से कहा, देखने में तो काफ़ी शरीफ लगता है और इमेज भी बहुत अच्छी है, फिर मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे प्रतीक सर से इस बारे में बात करनी होगी। यशवर्धन का मैसेज देखकर वैदेही परेशान हो गई थी। जैसे तैसे उसने अपना रूटीन पूरा किया और तैयार होकर नरगिस के साथ ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचते ही वो अपनी केबिन में जाने के बजाय सबसे पहले चैनल के सीईओ प्रतीक शर्मा के केबिन में घुसी। गुड मॉर्निंग, आज तो सब जगह तुम ही छाई हुई हो, बोलते हुए प्रतीक ने अपने लैपटॉप का मुंह वैदेही की तरफ कर दिया, जहां पर सोशल मीडिया पर वैदेही का नाम ट्रेंडिंग पर था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वैदेही ने गंभीर होकर कहा। प्रतीक ने हामी भरते हुए वैदेही को बैठने का इशारा किया। एनीथिंग सीरियस? उसने पूछा। पता नहीं, कल नरगिस ने मुझे हवा में एक बात बोली थी कि यशवर्धन सिंह को ही इस बार सीएम बनाया जाएगा। अभी तक तो इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने साथी चैनलों से भी बात की है, उन्हें भी इस न्यूज़ के कंफर्म होने पर संदेह है। लेकिन देखना तुम, ये न्यूज़ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। यशवर्धन सिंह सिर्फ 28 साल का है, अगर वो सीएम बना तो वो अब तक का सबसे यंग सीएम होगा। आप लोग इतनी अश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि यशवर्धन ही सीएम बनेगा, जबकि उसके अगेंस्ट जिसे खड़ा किया गया है वो भी काफी स्ट्रांग है। तब तो दाल में जरूर कुछ काला है। उसकी बात सुनकर वैदेही यशवर्धन सिंह की कही बातों के बारे में सोचने लगी। उसने अपना मोबाइल दिखाया और यशवर्धन सिंह का भेजा हुआ मैसेज प्रतीक के सामने कर दिया। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और कहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है, वैदेही ने यशवर्धन से हुई बातों के बारे में बताया। दैट्स ग्रेट, तो उसने तुम्हें इस मीटिंग के लिए पर्सनली इन्वाइट किया है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस तरह की मीटिंग्स काफी प्राइवेट होती हैं। रिपोर्टर को इन्वाइट करना तो दूर, उन्हें आसपास फटकने तक नहीं दिया जाता। फिर उसने मुझे पर्सनली इन्वाइट क्यों किया है, वैदेही ने हैरानी से पूछा। ये तुम पूछ रही हो, ये साफ जाहिर है कि बाकी सबकी तरह वो भी तुम्हारे काम से काफी इम्प्रेस है। उसकी इमेज एक सच्चे और युवा नेता के रूप में है और तुम भी सच्चाई के लिए लड़ती हो, प्रतीक ने जवाब दिया। तो क्या मुझे ये मीटिंग अटेंड करने जाना चाहिए? ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन यशवर्धन सिंह ने खुद तुम्हें इन्वाइट किया है, इसका मतलब बात कुछ जरूरी ही होगी। वैदेही ने प्रतीक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी का मतलब प्रतीक अच्छे से समझ रहा था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। इट्स ऑल अप टू यू कि तुम ये मीटिंग अटेंड करना चाहती हो या नहीं। इट बेटर बी, वैदेही मुस्कुराते हुए अपने केबिन में आ गई।
उसके वहां से जाते ही प्रतीक ने खुद से कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, उसूलों के चलते ये अपनी जान भी दे सकती है। अगर यशवर्धन सिंह ने इसकी पर्सनैलिटी और लुक को देखकर ये कदम उठाया है तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है। वो गलत जगह अपने हाथ पैर मार रहा है। प्रतीक उस बात को वहीं छोड़कर अपने काम में लग गया, जबकि वैदेही भी वहां से अपने केबिन में लौट चुकी थी।